नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है फोटो पत्रकारिता। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम फोटो पत्रकारिता।
नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह भारत में बहुत नया तो नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जोड़कर देखा जाए तो इसने पत्रकारिता को, चाहे वो प्रिंट की पत्रकारिता रही हो या फिर टेलीविजन की पत्रकारिता रही हो या फिर अन्य माध्यम सोशल मीडिया की पत्रकारिता रही हो या फिर अखबार की पत्रकारिता रही हो, इन सभी में फोटो पत्रकार ने या फोटो पत्रकारिता ने बड़ा योगदान निभाया। लिखे हुए शब्दों पर भरोसा करना फोटो की तुलना में कम था, लेकिन जैसे ही फोटो समस्या से संबंधित या फिर उस खबर से संबंधित अखबार में फोटो लगने लगे, लोगों का अखबारों के प्रति या समाचार के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। मनुष्य की सीखने तथा अपने ज्ञान विस्तार की हमेशा से आकांक्षा रही है, ऐसा उसने नए स्थान की यात्रा करके किया। मनुष्य ने जो नई चीजें देखी उसके चित्र बनाए या अपनी यात्रा का वृतांत लिखा। इसके बाद मुद्रण आया और मुद्रण लिखित शब्दों को लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय कर रहा है। मुद्रित शब्द हाथ से बनी तस्वीरों के साथ होते थे जो बताते थे कि क्या लिखित है। इससे चीजों के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ा तथा जिसके बारे में लिखा गया था उसे वे कल्पना में चित्रित कर सकें। फोटोग्राफी के आगमन के साथ समाचार ज्यादा अधिक तथा ध्यान आकर्षक के साथ तस्वीर सहित दिए जाने लगे। फोटोग्राफ ने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लिखित समाचारों का सहायक बनना शुरू कर दिया था तथा इस प्रकार फोटो पत्रकारिता का जन्म हुआ। यानी कि हम जब पूरी तरीके से फोटो पत्रकारिता की बात करते हैं और उसकी शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें कैसे फोटो पत्रकारिता की शुरुआत हुई उसकी जानकारी मैंने आपको दी। इस पाठ को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, आइए हम उन विभिन्न उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है फोटो पत्रकारिता का अर्थ स्पष्ट करना, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी हम गहनता से या विस्तार से फोटो पत्रकारिता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फोटो पत्रकारिता की प्रवृत्तिता क्षेत्र की चर्चा, फोटो पत्रकारिता में संयोजन की महत्वता का वर्णन और अंतिम फोटो फीचर तथा फोटो संपादक शब्दों की व्याख्या। फोटो पत्रकारिता का अर्थ क्या है, आइए हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हर सुबह हम उठते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसमें हमेशा प्रथम पृष्ठ पर एक तस्वीर होती है जो दिन की महत्वपूर्ण खबरों को दिखाती है। इस तरह की तस्वीर फोटो पत्रकारिता का काम करती है या फोटो पत्रकारिता का परिणाम है। जब से फोटोग्राफी विकसित हुई तथा इसका उपयोग आसान हुआ, यह प्रयोग की दृष्टि से विशेषीकृत होती गई। इससे आप समझ सकते हैं कि फोटोग्राफी की खोज के बाद जल्द ही लोग हर्षित हो गए तथा अपने फोटोग्राफ लेने में सक्रिय भी। जल्द ही वे कैमरे के साथ यात्रा करने लगे, दूर स्थित जगहों की तस्वीरें लेने लगे तथा इसे उन लोगों को दिखाने लगे जो उन जगहों पर नहीं जा सकते थे। दुनिया में युद्ध होते रहे थे और फोटोग्राफरों ने वहां जाकर तस्वीरें उतारी। इस तरह के फोटोग्राफर पहले युद्ध फोटो पत्रकार थे। अभी इन तस्वीरों को लिखित समाचारों के साथ प्रकाशित करना संभव नहीं था। सन 1880 के लगभग हाफ टोन नामक प्रौद्योगिकी आविष्कृत हुई, जिसकी मदद से समाचार पत्रों में फोटोग्राफ का प्रकाशन संभव हुआ। फोटो पत्रकारिता जैसे कि आज हम जानते हैं, आजकल न्यूज फोटोग्राफी नाम से जानी जाती है। फोटोग्राफ जो किसी समाचार के सहायक होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, तथा वह फोटोग्राफर जो इस क्षेत्र के विशेषीकृत होते हैं फोटो पत्रकार कहलाते हैं। तो हमने जो बात करी कि फोटो पत्रकार कौन कहलाते हैं, फोटोग्राफ जो किसी समाचार के सहायक होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, तथा वह फोटोग्राफर जो इस क्षेत्र में विशेषीकृत होते हैं फोटो पत्रकार कहलाते हैं। अब हम फोटो पत्रकारिता के विविध रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार कौन कौन से फोटो पत्रकारिता के रूप हैं जो हमें जानने चाहिए, यहाँ जहाँ पर या ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार की संभावना है, और एक व्यक्ति या एक बच्चा जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता है, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे छात्रों के लिए या ऐसे लर्नर्स के लिए इन विषयों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला है खेल फोटो पत्रकारिता। चूंकि खेल आयोजन समाचारों का एक बड़ा भाग होते हैं, इसमें ऐसे फोटो पत्रकार भी होते हैं जो खेलों के छायांकन के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खेल फोटोग्राफी विशेषकृत कौशल तथा उपकरणों की मांग करती है। आजकल के फोटो पत्रकार ऐसे भी हैं जो किसी एक खेल के विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरणार्थ भारत में बहुत से फोटोग्राफर हैं जो क्रिकेट फोटोग्राफी को समर्पित हैं, क्योंकि क्रिकेट भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है जो साल भर दिन हो या रात खेला जाता है। तो आपके समझ में आया होगा कि खेल फोटो पत्रकारिता में रोजगार की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के खेल साल भर होते रहते हैं, और भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल दुनिया भर में होते रहते हैं। ऐसे में फोटो पत्रकार खेल जगत में या खेल फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकता है। दूसरा और मुख्य बिंदु है युद्ध फोटो पत्रकारिता। यह फोटो पत्रकारिता का आरंभिक रूप है। जी हाँ, युद्ध फोटो पत्रकारिता की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे आकर्षक जो युद्ध फोटो पत्रकारिता रही है, यह फोटो पत्रकारिता का आरंभिक रूप ही रहा है। जब फोटो पत्रकार युद्ध कवर करते थे तथा लड़ाई के मैदान में तस्वीरें भेजते थे, भारत में हम समाचार पत्रों में देश के भीतर के संघर्ष जैसे आतंकवादी गतिविधियां या दंगों की तस्वीर देखते हैं, जहां फोटोग्राफर खतरनाक परिस्थितियों में होते हैं तथा अपने जीवन को खतरे में डालकर हमें तस्वीर उपलब्ध कराते हैं। ग्लैमर फोटो पत्रकारिता क्या है? फिल्मी सितारे तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व खतरों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि अधिकांश लोग प्रसिद्ध तथा संपन्न लोगों के जीवन में झांक कर देखना चाहते हैं। अनेक फोटो पत्रकार हैं जो इस तरह की फोटोग्राफी में विशेषज्ञ हैं। इन्हें पापारेजी भी कहा जाता है, जो इटालियन भाषा का शब्द है। और इससे अगला जो फोटो पत्रकारिता में सबसे बड़ा स्थान घेरता है वह है तात्कालिक समाचार फोटो पत्रकारिता। इस पत्रकारिता का आशय उन घटनाओं को कवर करने से है जिनसे दिन प्रतिदिन की खबरें बनती हैं, जैसे राजनीतिक गतिविधियां, अपराध, दुर्घटना आदि। वस्तुतः यह सर्वाधिक सुलभ तथा सामान्य प्रकार की फोटो पत्रकारिता है, तथा जो फोटो पत्रकार के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भी है। फोटो पत्रकारिता का यात्रा, फोटो पत्रकारिता में क्या योगदान है, यानी कि यात्रा फोटो पत्रकारिता क्या है, उसके क्या लाभ हैं और इसमें भी क्या करियर बनाया जा सकता है। तो हाँ, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है और इस तरह की फोटो पत्रकारिता में किसी क्षेत्र के भौगोलिक सौंदर्य, निवासी संस्कृति, परंपराएं तथा इतिहास का दस्तावेज तैयार किया जाता है। यात्रा फोटोग्राफ व्यावसायिक तथा शौकिया दोनों तरह के फोटोग्राफरों द्वारा लिए जाते हैं। शौकिया लोगों द्वारा खींचे हुए फोटोग्राफ इंटरनेट के माध्यम से मित्रों, रिश्तेदारों आदि से फोटो शेयरिंग वेबसाइट द्वारा एक दूसरे को सुलभ होते हैं। वन्य जीव फोटो पत्रकारिता, वाइल्ड लाइफ फोटो पत्रकारिता के बारे में जैसा कि आपने सुना है, वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए डिस्कवरी जैसे वाइल्ड लाइफ चैनल, नेट जियो जैसे वाइल्ड लाइफ चैनल और भी प्रकृति के साथ में पत्रकारिता, चाहे ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, को लेकर व्यापक संभावनाएं दिखाई देती हैं। यह फोटो पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण रूपों में से एक माना जाता है। उच्चीकृत फोटोग्राफी उपकरणों के साथ साथ जानवरों के व्यवहार की अच्छी समझ तथा क्षेत्र की समझ वन्य जीवन फोटोग्राफ लेने के लिए आवश्यक है और यह बड़ा ही एडवेंचरस फील्ड है, जहां पर एक लर्नर, एक पाठक और जो पत्रकारिता से संबंधित है और नहीं भी है तो अपने कैरियर को बना सकते हैं। जी हाँ, वनों में रहना, जंगली जानवरों के बारे में जानना, नदियों झरनों की जानकारी, जंगलों की जानकारी, इन सब की जानकारी जुटाने के बाद में आपको फोटोग्राफ की भी व्यापक जानकारी होनी चाहिए, जिसके बाद एक अच्छे वन्य जीव फोटोग्राफर बन सकते हैं। हालांकि फोटोग्राफ के यह सभी विशेषकृत जो प्रकार हैं, रूप हैं, ये जो रूप हैं मैंने कुछ ही रूपों के बारे में बताया। फोटो पत्रकारिता एक व्यापक फोटो पत्रकारिता है और इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं और नई नई श्रृंखलाएं भी सोशल मीडिया के आने के बाद में और कैमरे का मोबाइल फोन में आना नए नए क्षेत्रों में नई नई संभावनाओं को तराश रहा है। हर समाचार के पास अनेक फोटो पत्रकार होते हैं, यानी कि हर समाचार पत्र के पास कई फोटो पत्रकार होते हैं जो उन सभी विषयों को कवर करते हैं दुनिया भर में जिनसे समाचार बनने की संभावना हो। फोटो पत्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला जो समाचार पत्र में वेतनभोगी कर्मचारी होता है और दूसरा जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे जो स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं और अपनी तस्वीरें समाचार पत्र तथा समाचार समितियों को बेचते हैं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए इस तरीके से भी फ्रीलांस फोटो जर्नलिज्म का एक व्यापक क्षेत्र है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। फोटो पत्रकारिता अब केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है, यह एक बड़ी व्यापक मतलब संभावना इसको कह सकते हैं कि उसने अपने दायरों को बढ़ाया है। समाचार के स्रोत के रूप में इंटरनेट के उभार के साथ ही फोटो पत्रकारिता का क्षेत्र वेब पत्रकारिता तक विस्तारित हो गया है। आज आप में से जो इंटरनेट उपयोग करते हैं उन्होंने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जो समाचार पत्रों की तरह होती हैं। यह साइट भी पत्रकारों तथा फोटो पत्रकारों को अपने संगठन हेतु समाचार एकत्र करने के लिए नियुक्त करती हैं। अब जबकि बहुत सारे लोगों के पास कैमरा युक्त सेलफोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भी यह जानना आपके लिए रुचिकर हो सकता है कि बहुत से समाचार पत्र तथा वेबसाइट हम जैसे लोगों द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ का उपयोग करते हैं, क्योंकि आम आदमी के रूप में कई बार उन जगहों पर फोटो पत्रकारिता हो सकती है जहां समाचार पत्र की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही हो। तो हम लोगों ने जो अब तक जाना वो फोटो पत्रकारिता के कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में जाना और फोटो पत्रकारिता के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना। ठीक है, अब हम लोग जो अगले उस पे बिंदु पे पहुंचेंगे तो इसमें है कि फोटो संयोजन, जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। फोटोग्राफ दे आपने संयोजन में, जब हम लोग बात करते हैं कि संयोजन फोटो के संदर्भ में संयोजन का क्या अर्थ है और संयोजन किस प्रकार होता है, तो इस अध्याय में हम लोग इस विषय पर संबंधित चर्चा करने के लिए है। कोई भी तस्वीर खुद बोलती है, इस बात को तो आप जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति फोटोग्राफ देख रहा हो उसे तक्षण यह समझ में आ जाएगा कि फोटोग्राफ क्या कह रहा है। जैसे आप अपने घर में बहुत सारी तस्वीरों को देखते होंगे, आप छोटे होंगे या आज भी जब आप बड़े हो गए हैं तब भी, जैसे मान लीजिए किसी रोती हुई लड़की की फोटो है, या फिर किसी एक फोटो है नदी में बहते हुई जलधारा की फोटो है, या नदी के अंदर रहने वाले जीवों की स्थिति के बारे में कोई फोटोग्राफ है, तो आप फोटो देखेंगे तो उसके बाद ही तुरंत बोल पड़ेंगे कि इसका ये प्रभाव होगा या ये जो फोटो है वो हमें यह बताना चाह रही है कि समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के अंदर प्लास्टिक के कचरे की अगर फोटो है तो आप ये बताएंगे। अगर आप जमीन पे कुछ फोटो आपको दिए जाएं और आग लगी हुई है और धुआं बहुत तेजी से उड़ रहा है तो आप कहेंगे कि वायु का प्रदूषण है और हम लोग थल को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से फोटो जो है बिना कुछ कहे, हजारों शब्द बिना कुछ कहे ही कह देते हैं और यह बड़ा ही प्रभावी ढंग से, बिना शब्दों की सहायता के प्रभावी ढंग से फोटोग्राफ्स हमको समय, परिस्थिति और काल के बारे में समझाने में सक्षम है। फोटोग्राफ देख रहा, अगर आपने देखा तो तक्षण यह समझ में आ जाएगा कि फोटोग्राफ क्या कह रहा है, यह बात तय है। कहा भी गया कि एक चित्र हजार शब्दों की ताकत रखता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक चित्र हजार शब्दों की ताकत तो रखता ही है, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ हैं, सिर्फ एक फोटोग्राफ ने लाखों और करोड़ों लोगों की भावनाओं को झकझोर के रख दिया है, उनको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो भी स्थितियां समाज में पैदा की गई वह उन्हीं के द्वारा की गई और उसके जो व्यापक गंभीर परिणाम समाज पर पड़ने वाले हैं या पड़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी बिना कुछ कहे, बिना किसी शब्द के बयान किए, स्वतः ही अपने आप ही फोटो के माध्यम से समाज के लोगों को समझ में आ जाती है। यह बड़ा काम सिर्फ तस्वीरें कर सकती हैं, शब्द उतना बड़ा काम करने में समय लेंगे, लेकिन समय की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। तो संयोजन पर जब हम लोग बात करेंगे तो इसका तात्पर्य है कि एक चित्र सरलता से 1000 शब्दों के बराबर संदेश को संप्रेषित कर सकता है। आपने अनेक फोटोग्राफ देखे होंगे जिनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए क्योंकि विषय जिसका फोटो खींचा गया उसे इस बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फ्रेम किया गया कि उसने देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ा। विषय के इस समावेशन या चित्र में, फ्रेम में, विषय में समावेशन को संयोजन कहा जाता है। अगर आपसे आने वाली परीक्षाओं में कोई पूछेगा कि समायोजन क्या है तो आप, मुझे लगता है कि यह बताने में सक्षम हो जाएंगे कि समायोजन क्या होता है। और इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं संयोजन के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करने की, तो इस विषय में, इस समावेशन या चित्र में, फ्रेम में, विषय में समावेशन को संयोजन कहा जाता है। तो संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन हम लोग कहते हैं विषय जिसका फोटो खींचा गया उसे इस बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फ्रेम किया गया कि उसने देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ा। यानी कि क्या किया? विषय के इस समावेशन या चित्र में, फ्रेम में, विषय में समावेशन को संयोजन कहा जाता है। संयोजन विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब फोटो पत्रकारिता के लोगों को समाचार सुलभ कराना होता है। यह फोटो खींचे विषय का समावेशन है जो देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अब हम एक परिस्थिति पर विचार करेंगे जिसमें आपको एक गरीब आदमी का फोटोग्राफ प्रदर्शित करना है। आप सड़क पर भीख मांगते किसी भिखारी की सामान्य फोटो खींचकर अपना संदेश संप्रेषित कर सकते हैं, लेकिन यदि यही फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि भिखारी कैमरे में सामने हो तथा पीछे एक संपन्न आदमी कार में बैठा हो, ऐसे में यह चित्र ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा, क्योंकि इसका संयोजन दो लोगों के बीच के विरोधाभास को प्रदर्शित करता है तथा गरीब आदमी की परिस्थिति को अमीर आदमी के समक्ष स्पष्ट करता है। तो आपने समझा कि संयोजन का क्या प्रभाव पड़ सकता है फोटोग्राफ की सहायता से। अगर यही चीज एक गरीब आदमी के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाता तो शायद आप भले ही प्रभावी ढंग से लिख पाते, लेकिन आप उस फोटो में जो गरीब और अमीर के बीच की एक परिभाषा को गढ़ रहा है, उस परिभाषा को उतनी स्पष्टता से नहीं लिख पाते। कुछ ही लोग होंगे जो लिख पाएंगे, जितनी स्पष्टता से फोटो पत्रकारिता में एक फोटोग्राफर या फोटो पत्रकार करने में सक्षम होता है। संयोजन से फोटोग्राफ को आंखों के लिए अपील करने वाला बनाया जाता है। युद्ध तथा खेल के एक्शन फोटोग्राफ एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं तथा देखने वाला उसे अपने आसपास महसूस करता है। संयोजन संतुलन की भी मांग करता है, अर्थात फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि देखने पर हमारी आंखें किसी एक हिस्से या कोने पर केंद्रित नहीं हो। ये एक बड़ी बात है और फोटोग्राफ में इसको बड़े ही एक फोटो पत्रकार जो है इस बात को बड़ी ही गहराई से समझता है और वह चाह कर भी इन गलतियों को नहीं करता है। संयोजन से फोटोग्राफ को आंखों के लिए अपील करने वाला बनाया जाता है। युद्ध तथा खेल के एक्शन फोटोग्राफ एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं तथा देखने वाला उसे अपने आसपास महसूस करता है। जब हम सृजन की संयोजन की बात करते हैं तो कई बार फोटोग्राफ में बहुत सारी एडिटिंग की जाती है और एक्शन फोटोग्राफ एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं। युद्ध और खेल में एक्शन, तो उसमें टाइमिंग जो है बड़ा ही मायने रखता है कि किस टाइम पर आपने क्लिक किया है, और ऐसे फोटोग्राफ या फोटोग्राफर ऐसे समय में मल्टीपल क्लिक्स का सहारा लेते हैं। संयोजन संतुलन की भी मांग करता है, अर्थात फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि देखने पर हमारी आंखें किसी एक हिस्से या कोने पर केंद्रित ना हो। विभिन्न विषय इस तरह से संगठित होने चाहिए जिससे तस्वीर का सुखद प्रभाव पड़े। फ्रेमिंग के कुछ सामान्य नियम होते हैं, जिनमें से तीसरे का नियम, रूल ऑफ थर्ड इसको बोलते हैं, सर्वाधिक सामान्य है। तो रूल ऑफ थर्ड सर्वाधिक सामान्य है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से किसी और समय में चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वाधिक सामान्य नियम फोटोग्राफी में रूल ऑफ थर्ड ही माना जाता है। यह नियम क्या कहता है, मैं छोटा मोटे मोटे तौर पर इस नियम की चर्चा कर देता हूँ कि फ्रेम में स्थित तत्व इस तरह अवस्थित हों कि वे लगभग उन विभाजक लकीरों पर पड़े जो फ्रेम को तीन कॉलम या रो में बांटती हो। एक बार फिर से मैं बता दूं, यह नियम रूल ऑफ थर्ड यानी कि तीसरे का नियम रूल ऑफ थर्ड, यह नियम स्पष्ट करता है कि फ्रेम में स्थित तत्व इस तरह अवस्थित हों, इस तरह से एस्टैब्लिश हों कि वे लगभग उन विभाजक लकीरों पर पड़े जो फ्रेम को तीन कॉलम तथा रो में बांटता हो। आपने देखा होगा कि जो फ्रेम है आपके कैमरे में जहाँ पे स्क्रीन होती है वो ऑलमोस्ट तीन रो और तीन कॉलमों में बटा होता है। जी हाँ, तो आपको फोटो ऐसे लेनी है कि ये जो फोटो आप ले रहे हैं वे किसमें रहे? तीन कॉलम और तीन रो, रो और कॉलम के बीच में बटी हो। इसीलिए यह अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन यह देखने वालों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में कामयाब होता है। तो इसके बारे में भी आपने अब समझ लिया होगा कि हाँ, यह जो नियम है वो देखने वालों के लिए एक सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैमरा एंगल। वह तत्व है जो संयोजन को प्रभावित करता है। यदि तस्वीर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे कोई नेता या फिल्मी व्यक्ति, जो फोटो लेते समय कैमरा उनकी दृष्टि रेखा से नीचे रखा जाएगा, तो ऐसा करने पर वह व्यक्ति ज्यादा बड़ा नजर आएगा। इसी तरह जब व्यक्ति की ऊंचाई से ऊपर से शॉट लेंगे तो उसे टॉप एंगल कहेंगे, जिसमें व्यक्ति छोटा नजर आएगा। संयोजन में यह सभी प्रकार तस्वीरों को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद देते हैं कि क्या वह कहना चाहती है, जिससे दर्शक आसानी से अर्थ को समझ सकें। ये कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो एक फोटोग्राफर बनने से पहले या फोटो पत्रकारिता में जाने से पहले पाठक को या इस विषय में पढ़ाई करने वाले, इस डिसिप्लिन में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जाननी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, जिसमें जो है फोटो फीचर तथा फोटो संपादन के ऊपर। फोटो फीचर और फोटो संपादन क्या होता है और किस तरीके से इसका जो है योगदान एक फोटो को अच्छा बनाने में और फोटो की काट छाट करने में होता है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। फोटो फीचर को फोटो निबंध भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह फोटोग्राफों के माध्यम से किसी विषय पर कहानी या निबंध प्रस्तुत करता है। यह किसी भी विषय, कोई स्थान या व्यक्ति जिसका फोटो खींचा गया हो पर आधारित हो सकता है। आपने पत्रिकाओं में रोचक विषयों पर फोटो फीचर देखे होंगे। एक फोटो पत्रकार फोटो फीचर कैसे तैयार करता है, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। फोटो फीचर सामान्यतः पत्र या पत्रिका के संपादन की डेस्क पर आकार लेता है। पत्र या पत्रिका संपादक की डेस्क पर आकार लेता है और फोटो संपादक इसके बारे में निर्देशित करता है। देखिए, जब हम लोग फोटो फीचर के बारे में बात करेंगे तो ज़रूरी है कि मैगज़ीन के बारे में भी हम लोग बात करें, और मैगज़ीन कि जब हम लोग बात करेंगे तो मैगज़ीन का अस्तित्व बिना फोटो के दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता। चाहे आप उसको इंटरनेट की मैगज़ीन के बारे में बात कर लीजिए या फिर हमारे जो पुरानी मैगज़ीन्स की जो परंपरा रही है उसमें बात कर लीजिए, और आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए उन मैगज़ीनों के बीच में जो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करती हैं और ऐसी मैगज़ीन जो कंटेंट और फोटो दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो इस विषय में हम लोग यह बेहतर तरीके से मानेंगे कि जो मैगजीन्स कंटेंट के साथ में फोटो उतनी ही मात्रा में प्रोवाइड करती हैं जितने मात्रा में कंटेंट, तो वो ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा असरदार होती हैं। फोटो फीचर सामान्यतः पत्र या पत्रिका के संपादन की डेस्क पर आकार लेते हैं, यह बात सही है, और फोटो संपादक इस बारे में निर्देशित करता है। जी हाँ, कि जब भी कोई खबर होती है उससे संबंधित कम से कम बहुत सारे फोटो लोगों के पास में होते हैं, फोटो संपादक के पास में होते हैं। अब वैसे फोटो संपादक वाला जो आप कहेंगे कि जो एक पद था जिसको फोटो संपादक कहते थे, फोटो एडिटर कहते थे, जो अखबारों में भी हुआ करता था और मैगजीनों में भी हुआ करता था, जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फोटो संपादक की कहानी या फोटो संपादक के पदों में कहीं ना कहीं व्यापक रूप से कमी आई है। और अब एक फोटो पत्रकार ही, जो सीनियर बड़ा फोटो का पत्रकार होता है, वही फोटो संपादन का कार्य करने लगा है और व्यापक तौर पर करने लगा है। फोटो फीचर सामान्यतः पत्र या पत्रिका के संपादक की डेस्क पर आकार लेते हैं और फोटो संपादक इसके बारे में निर्देशित करता है। अब प्रश्न उठता है कि फोटो संपादक कौन है। फोटो संपादक किसी समाचार पत्र या पत्रिका में फोटो विभाग का प्रभारी होता है। यह फोटोग्राफर का चयन करता है तथा उससे विषय पर चर्चा करता है। वह उस रिपोर्टर पर भी चयन कर सकता है जो फोटो निबंध के लिए समाचार या विवरण तैयार करे। यह भी फोटो संपादक का कार्य है कि वह स्थिति को स्पष्ट करने वाले सबसे अच्छे चित्रों का चयन करे। तो आप पहले ही जान चुके हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों की ताकत रखता है। इस प्रकार कुछ चित्रों से बना एक अच्छा फोटो निबंध सर्वश्रेष्ठ लिखित निबंध से ज्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ेगा, इस बात में कोई भी दोरा नहीं है। अब हम एक फोटो फीचर का उदाहरण लेंगे जो एक परिवार पर आधारित है तथा इसके 5 फोटोग्राफ का चयन करें जो एक को दूसरे से संबंधित हो, जो एक जिसका एक से दूसरे से संबंध हो। यदि परिवार में माता पिता, उनकी पुत्र या दादा दादी हो तो आपके पास बहुत सारे फोटो बन सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इन इन फोटो को लेने की कोशिश आप कीजिए। जैसे पहला फोटो है कि पूरे परिवार का सामूहिक फोटो जब वह भोजन कर रहे हों, दूसरा काम मतलब अपनी जॉब पर जाते हुए या किसी इम्पोर्टेंट काम पर जाते हुए पिता, रसोई घर में खाना पकाती माँ, स्कूल से घर आती बेटी या बेटा और टेलीविजन देखते दादा दादी या एक्सरसाइज करते बुजुर्ग। तो इन सब को मिला के आप एक अपना फोटो कोलाज तैयार कीजिए और उसमें यह जानने की कोशिश कीजिए, साथ में एक छोटी सी कहानी भी लिखिए इन्हीं चीजों से संबंधित हो जो आपके परिवार से संबंधित हो, और फिर दोनों को बराबर में रखे यह अनुभव कीजिए या तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि आखिरकार फोटो फीचर ज्यादा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है आपके ऊपर, ज्यादा समझाने में मदद कर रहा है, या फिर आपके द्वारा लिखित फीचर सिंपल राइटिंग फीचर जो है ज्यादा सहायक है। इन बातों को गौर कीजिए और आज की चर्चा को मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ और कुछ प्रश्न भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे आप इन बातों को अपनी नोटबुक पर लिखने की कोशिश कीजिए कि फोटो पत्रकारिता क्या है, समाचार पत्रों से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, इसके अलावा फोटो पत्रकारिता में संयोजन का क्या उपयोग है, फोटो फीचर में फोटो संपादन की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसके अलावा आप फोटो पत्रकार की विभिन्न भूमिकाएं, कौन कौन सी भूमिकाएं एक फोटो पत्रकार की होती हैं, उसको लेकर भी आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल फोटो पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों को हमने बड़े व्यापक तौर पर समझा और पढ़ा, जैसे इसमें खेल पत्रकारिता बड़ा व्यापक, इसमें जो है स्कोर है बड़ा व्यापक, इसमें जो है स्पेस है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बात की गई युद्ध फोटो पत्रकारिता की, यह भी एक बड़ा व्यापक स्पेस है जिसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं। एवं इसके अलावा आप ग्लैमर फोटो पत्रकारिता, जो कि पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा है और फिल्मी दुनिया में व्यापक तौर पर फोटो पत्रकार इसमें काम करते हैं या अर्निंग करते हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा तत्कालिक समाचार फोटो पत्रकारिता, जो आज के विषय में संबंधित फोटो पत्रकारिता है, आज के समाज से जुड़ी हुई फोटो पत्रकारिता, इसको लेकर के भी आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। और अंत में जो मैंने बात करी यात्रा फोटो पत्रकारिता और वन्य जीव लाइफ वाइल्ड लाइफ फोटो पत्रकारिता, इन सभी पत्रिकाओं के उदाहरण मैंने आपको दिए। इन सभी उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से, जब भी आप इस फील्ड में जाएं, फोटो पत्रकारिता में आप जाने की कोशिश करें, तो आप नौकरी की संभावनाओं को देखें, समझें और उसके बाद ही वहां पे आगे बढ़ें। तो बच्चों आज फोटो पत्रकारिता के इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।